जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे।
आप बजाओ
जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे।
एवरीबॉडी प्लीज चैंट लाउडली
जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे।
इतने दूर से हम बंबई से आए हैं, कुछ लोग अमेरिका से आए हैं, हम लोग यहाँ पर राधा रानी को पुकारने के लिए आए हैं, हृदय से पुकारने के लिए आए हैं। इसलिए सब लोग पुकारो, संकोच मत करो, कंजूसी मत करो।
जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे।
जय राधा माधवा जय
जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा
राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल प्रभुपाद की श्री वृंदावन धाम की श्री बरसाना धाम की श्री पीली पोखर धाम की निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदांतिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गौरांग महाप्रभु षड गोस्वामी प्रभु गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हमारे परम गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद इन सबकी असीम कृपा से हम इस सब धामों का दर्शन कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने अगर इतना सारा त्याग नहीं किया होता तो हम सब लोग आज इस धाम में नहीं होते। मुझे याद है जब मैं गिरिराज महाराज से एक बार वार्तालाप कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जब वृंदावन का मंदिर बन रहा था उस समय जितने भी भक्त वहाँ पर थे सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वो कहते हम परिक्रमा रोड के आगे कहीं गए नहीं। इतनी सेवा थी इतना काम था कि वो जहाँ पर मंदिर बन रहा था रमन रीति धाम में उसके थोड़े थोड़े से आगे अधिक से अधिक बांके बिहारी मंदिर वहाँ तक ही जा पाए और आगे उन्होंने कई सालों तक कुछ दर्शन नहीं किया। तो मुझे ये सुनकर बड़ी कृतज्ञता मन में हुई कि प्रभुपाद जी ने और इन सब भक्तों ने मिलकर इतना सारा त्याग किया है। और उन्होंने इतना त्याग किया है खुद कुछ दर्शन नहीं किए हैं। प्रभुपाद जी कुछ भक्तों को लेकर जाते थे दर्शन करने के लिए लेकिन जो मेन भक्त थे जिन्होंने ये कृष्ण बलराम मंदिर खड़ा किया है वो कहीं नहीं गए। इन्होंने इतना त्याग किया है इसलिए हम लोग अभी सब घूम रहे हैं, सुदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज कृष्ण बलराम मंदिर इस्टेब्लिश्ड है, प्रचार भी वहाँ से हो रहा है, अच्छी तरह सेवा भी हो रही है। उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था इसको स्थापन करने का, तो हमें सभी भक्तों के ऋणी हैं। और फिर बाकी गुरुजनों ने जो प्रभुपाद के शिष्य हैं उन्होंने फिर धीरे धीरे जाकर सब जगह पर दर्शन करना आरंभ किया, और अभी वो अपने भक्तों को लेकर भी दर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हाथ जोड़कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब तक परम गुरुदेव की कृपा नहीं होती है तब तक धाम प्रकट नहीं होता है। इन्हीं की कृपा से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस धाम का आनंद लीला दर्शन आचमन कर सकते हैं। जब 1986 में सब लोग सबसे पहले हम श्री वृंदावन धाम में आए थे, मतलब सबसे पहली बार, राधानाथ स्वामी महाराज भी कुछ 16 साल के बाद में वृंदावन आ रहे थे। 1971 में जब यहाँ पर थे, उसके बाद जो चले गए न्यू वृंदावन में, और वहीं पर 16 साल रहे। 1986 में जब आए बम्बई तो सबसे पहले दिसंबर में पहली यात्रा निकाली, उस यात्रा में केवल 22 लोग थे। आज के लिए 22 लोगों की यात्रा एक स्वप्न है। तो उस यात्रा में जब हम मथुरा स्टेशन में उतरे थे तो मथुरा स्टेशन पर राधानाथ स्वामी हमको लेने आए थे, और मथुरा स्टेशन पर हम लोग उतरे तो उधर ही हमको एक प्रवचन दिया उन्होंने, वेलकम प्रवचन। अभी ये याद करके इतना अच्छा लगता है। उस प्रवचन में जो एक बात कही थी वो आप सब लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बरसाना यात्रा काफ़ी हद तक सफल हो सकती है अगर वो बात हम समझेंगे और उसको अमल में उतारेंगे। उन्होंने कहा था कि When we come to Brajbhumi, from the moment we touch the Brajbhumi, maybe at Mathura station, from that time till we board the train back to Bombay or wherever we go, at the bottom of our hearts, we should keep continuously and intensely praying for the mercy of Radharani. Vrindavan Dham mein pravesh karte hi, hamare hriday ke andar ke kone mein hame Shrimati Radharani ki kripa yachana करने आरंभ करनी चाहिए और करते रहना चाहिए जब तक हम वापस नहीं लौटते, क्योंकि यहाँ पर टिकट निकाल के एसी नॉन एसी सेकंड क्लास यहाँ पर अच्छे अच्छे रूम बुक करके धाम का प्रवेश नहीं होता है। धाम का प्रवेश शरीर से होने से कोई मतलब नहीं। भागवतम कहते हैं कि गधा ऊंट सुअर और अन्य जानवर भी धाम में आते हैं, केवल आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं और चले जाते हैं। सैव गोखरम ऐसे ही कहा गया है श्रीमद् भागवत में। हमको अगर आत्मा से धाम में प्रवेश चाहिए तो बिना श्री जी के कृपा से, बिना राधा रानी के कृपा से प्रवेश नहीं हो सकता है। और अगर उनकी कृपा चाहिए तो उनको पुकारना होगा। तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर लोकल कॉल है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल नहीं है। यहीं पर वो विराजती हैं, यहीं पर लीला करते रहते हैं, नित्य लीला है यहाँ पर। और अगर आप पुकारेंगे हृदय से, जप और गायन एक बात है और पुकारना दूसरी बात है। इन सबको पुकारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी को पुकारने के लिए ब्रह्मा जी पत्थर बने हुए हैं, महादेव जी गोपेश्वर बनकर आते हैं यहाँ पुकारने के लिए, सभी देवी देवता आते हैं, सप्त ऋषि आते हैं, सब महात्मा जन आते हैं केवल राधा रानी को पुकारने के लिए। इसलिए यहाँ पर आकर इतनी दूर आपने मेहनत करके छुट्टी निकाल के टिकट निकाल के पैसा खर्च करके आप यहाँ तक आए हो, तो राधा रानी को पुकारना हृदय से मत भूलना।
जय जय श्री राधे।
पूरे विश्व में सब लोग वृंदावन आना चाहते हैं और वृंदावन आकर कृष्ण भगवान के चरणों की धूल चाहते हैं सब लोग, सभी लोग जितने देवता भक्त महात्मा संत जन है सब लोग परमात्मा कृष्ण भगवान की चरणों की धूल चाहते हैं। लेकिन ये बरसाना ऐसी जगह है जहाँ पर वो परम ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोकेश्वर श्री कृष्ण जो हैं वो राधा रानी के चरणों की धूल लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। न केवल धूल लेने के लिए आते हैं, इसमें लोटपोट हो जाते हैं, इसके लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके लिए सखी बन जाते हैं। जिसके लिए हम पूजन कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड के जितने योगी तपस्वी ध्यानी जन है, वो सब लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या कर रहे हैं इनके चरणों की रज पाने के लिए। लेकिन ऐसे कहते हैं कि इतना सब करने के बाद भी इनके 20 नाखूनों के द्वारा निकलने वाले अनंत जितने किरण है उसमें से एक किरण का भी दर्शन इनको नहीं होता। और वही कृष्ण भगवान जो है यहाँ पर आकर गोपियों के और राधा रानी के इशारे पर नाचते हैं, तालियां बजाते हैं गोपियाँ, और वो नाचते हैं, फिर थोड़ा मक्खन देते हैं, फिर तालियां बजाते हैं, फिर वो थोड़ा नाचते हैं, फिर थोड़ा मक्खन देते हैं। जो परम ब्रह्म किसी के अधीन नहीं है, किसी को प्राप्त नहीं है, वो यहाँ पर राधा रानी और गोपियों के अधीन है। और ये जानते हुए महादेव भी यहाँ पर आते हैं। आगे जाकर एक गौरी कुंड है, गौरी कुंड भी है उसका नाम जल विहार कुंड भी है। वहाँ पर शंकर जी आकर सखी का श्रृंगार कर रहे थे, उतने में गौरी जी वहाँ प्रकट हो गई और हंसने लगी कि आप पुरुषों को तो पता ही नहीं सखी कैसे बनना है। तो फिर गौरी जी ने महादेव जी का श्रृंगार किया है और महादेव जी को सखी बनाकर सजा कर भेजा है कि जाओ अभी पुकारो। तो महादेव जी फिर गोपेश्वर गोपी बनकर श्री जी के महल में जाकर उन्होंने पुकारा है। तो महादेव जी पुकारते तो हम कौन हैं, अगर हम पुकारने में संकोच कर रहे हैं मतलब हमको पता ही नहीं, इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ सब राधा रानी को पुकारो। ये धाम की विशेषता ऐसी है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में भी नहीं आते, हमेशा सखी बनकर आते हैं। बिना सखी बनकर उनको प्रवेश नहीं मिलता है, रोका जाता है, तो चुंदरी ओढ़कर बड़ा घूंघट ओढ़कर आते हैं। इस वर्षाना के क्षेत्र की और एक महात्म्य यह है कि यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आया है। एक बार कंस आए थे ढूंढते ढूंढते कृष्ण भगवान को, तो वो आकर यहाँ पर स्त्री बन गए। 6 महीने तक उन्होंने कंसनी गोपी बनकर कंडे लिपवाए गोबर के, उसके बाद श्री जी ने उनको माफ़ किया है। और फिर दोबारा किशोरी कुंड में छलांग लगाकर उनको पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है। और पुरुष का शरीर 6 महीने के बाद प्राप्त होने के बाद वो यहाँ से भागे, मथुरा तक भागे, टर्न भी नहीं किया पीछे मुड़कर, कहीं श्री जी का मन बदल जाए तो। फिर दोबारा उन्होंने वार्निंग दिया था, दोबारा यहाँ पर आओगे तो परमानेंट कन्या बनकर रहोगे, याद रखना। ऐसा महाप्रताप है श्री जी का, इसलिए कोई राक्षस यहाँ पर नहीं आया, कोई राक्षस का वध करने की यहाँ पर लीला नहीं है, नंदगांव में नहीं है, बरसाने में नहीं है, यावट में भी नहीं है। ये विशेष बात है, समझ देखिए। तो इसलिए हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। यहाँ पर स्वयं कृष्ण जो है वो एक भिक्षुक बनकर आते हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक है वो, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत सबके निर्माण करता है, सबका नियंत्रण उनके हाथ में। लेकिन वो स्वयं यहाँ पर अपनी भगवत्ता का स्थान छोड़कर एक भिक्षुक बनकर आते हैं, याचक बनकर आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, रज में लोटपोट हो जाते हैं। इसलिए हमें भी यहाँ पर हमारी सारी टोपियों को उतार के आना चाहिए कि हम बम्बई के हैं, पढ़े लिखे हैं, ये हमारी डिग्री है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इतना हमारे दोस्त लोग हैं, अनुयायी है, ये सारे जो झूठ मूठ के हमारे अहंकार है, वस्त्र है, सबको उतारना चाहिए। तो केवल जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, केवल इसी भावना से दास दास अनुदास सेवा भाव लेकर हमको यहाँ आना है। इसलिए अजीब लगता है जब हम कहते हैं कि हमको भिखारी बन के आना है, भिखारी तो है नहीं, हमारे पास वो पैसा है, भिख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ स्वयं कृष्ण किसकी भिक्षा मांगते हैं, क्या मांगते हैं भिक्षा में, वो रति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं राधा रानी से, सेवा मांगते हैं। तो उसके विषय में तो हम कंगाल ही हैं, हम ही तो कंगाला, कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब वो पाछे पाछे। इसलिए सब लोगों को अपना भौतिक जो झूठा अहंकार है उसको छोड़कर यहाँ पर प्रेम रति स्नेह की भिक्षा मांगने के लिए आना चाहिए, क्योंकि राधा रानी जो मांगते हैं उसको देती है, उसका जीवन धन्य कर देती है। कृष्ण भगवान भी जो व्यक्ति राधा को पुकारता है उसके पीछे पीछे भागते हैं। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़ के आएंगे। एक मोर था जो नंदगांव गया और कृष्ण को पुकारने लगा, हे गोपाल, बोलिए, हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, हे यशोदा नंदन। बहुत पुकारा, कोई रिस्पांस नहीं मिला उसको। दुखी हो गया बेचारा कि बरसाने में आया और यहाँ पर पुकारा, हे श्री जी, हे राधा रानी, हे विश्वभानु नंदिनी, हे करुणा मई। तो तुरंत राधा रानी आ गई और तुरंत मोर को गोद में लिया। मोर रो रहा था तो राधा रानी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? नंदगांव गया, पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, भी दोबारा नंदगांव जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण को नहीं पुकारना, इस बार बोलना, हे राधे, हे विश्वभानु नंदिनी। इतना भी नहीं बोलना पड़ा उसको, केवल रा उच्चारण करते भाग के आए। कौन मेरी राधा रानी को पुकार रहा है? भाग के आए, तुरंत मोर को गोद में लिया। मोर अति आनंद के विकार में व्यस्त हो गया, उसके सब रोम खड़े हो गए, सब उसके मोर पंख जो है झड़ गए इतने आनंद से। तो ऐसे भाव विभोर हो गया मोर, तो भगवान ने उसे झड़ा हुआ जो पंख है उसको उठाकर सर पे लगा दिया। तो हमारे जो मदन मोहन जी हैं, जो अभी उनका शरीर समाप्त हो गया, गौलोक धाम गए, वो कहते थे जो व्यक्ति राधा रानी को पुकारता है उसके पीछे पीछे ठाकुर चला करते हैं, उसके पीछे पीछे चलकर सुना करते हैं कि किस शुद्ध नाम को उच्चारण कर रहे हैं। और जो उसके नाम को पुकारता है राधा रानी के, वो उसी के हो जाते हैं, उसी के पीछे पीछे डोलते हैं। इसलिए अगर हमें ज़िंदगी में श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का प्यार पाना है, तो वो कहते हैं कि राधा रानी का नाम पुकारते रहना चाहिए। श्री राधे श्याम। श्री बरसाना से ही जो हम नेक्टर ऑफ डिवोशन और अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, जो रस हम कहते हैं, रस यानी कि द मेलो ऑफ डिवोशन, अनंत प्रकार के रस रसिक भक्त लोग उसका आस्वादन करते हैं, कृष्ण भगवान भी उस रस की अपेक्षा करते हैं। वो तो सारे रस का उगम जो है वो बरसाने से हुआ, यहीं से सब प्रकार के रस, सब प्रकार के प्रेम भक्ति की भावना निर्माण होती है और यहीं से पूरे ब्रज में उसका विकास होता है, प्रचार होता है और वृद्धि होती है। और श्री कृष्ण भी रस की प्राप्ति राधा रानी के पास से करते हैं। इसलिए हमें भी समझना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं। जो 40 दिन की होली होती है वो दुनिया में केवल एक ही जगह पर होती है, वो बरसाने में होती है। बसंत पंचमी को आरंभ होती है और गौर पूर्णिमा तक चलती है, 40 days, उसी का आगम उगम भी उसी बरसाने में है। यहाँ पर जब राधा रानी चलती है तो उनके घुंघरू जो है, नुपुर जब बजते हैं और जब उसमें से दिव्य ध्वनि निकलता है, तो उस दिव्य ध्वनि से सारे वेद निर्माण होते हैं। ऑल द वेदर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द डिवाइन साउंड ऑफ द एंकल बेल्स ऑफ राधा रानी इन बरसाना ओनली। हरे कृष्णा। शांडिल्य मुनि के अनुसार ये बरसाना जो है अधिवन के वर्गीकरण में आता है। 4 प्रकार के वन होते हैं, एक है वन, एक है प्रतिवन, एक है उपवन और एक है अधिवन। तो बरसाना ये अधिवन है और इस अधिवन का मंत्र आप बोल लीजिए। शास्त्रों में ये मंत्र आते हैं, ये मंत्र उच्चारण करने से और यहाँ बैठ के प्रणाम करने से बहुत हृदय की शुद्धि होती है। इसलिए आप लोग मंत्र बोलिए, उसका मैं अर्थ बताऊँगा। महिभानुसुतायैव कीर्तिदायै नमो नमः। सर्वदा गोकुले वृद्धिं प्रयच्छ मम कांक्षितम्। महिभानु ये वृषभानु के पिताजी का नाम है, उनकी सुता यानी कीर्तिदा देवी, जिनकी कन्या राधा रानी है। तो महिभानु महाराज की कन्या
कीर्तिदा मैया को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी राधा रानी माता कन्या है। सर्वदा गोकुले वृद्धिम, यानी यहाँ पर प्रणाम करके हम चाहते हैं कि हमारे गोधन की वृद्धि हो। और एक मंत्र है, दो मंत्र है, इसको बोलिए, ध्यान करके बैठिए सब लोग और बोलिए, ओम क्लौम, बोलिए क्लौम वृषभानुपूरा अधिबना अधिपतये राधा कृष्णाया स्वधा, क्योंकि इस अधिबन के अधिपति राधा और कृष्ण हैं। अभी ध्यान का एक मंत्र है, उसका अर्थ है कि मैं ब्रह्माचल में स्थित राधिका और कृष्ण को वंदन करता हूँ। ये भारद्वाज वंशज से है। राधया सहितम, थोड़ा जोर से बोलिए, राधया सहितम कृष्णम ब्रह्म पर्वता संस्थितम वंदे प्रदक्षिणा सांग सर्वदा वरदायकम। राधया सहितम कृष्णम ब्रह्म पर्वत संस्थितम वंदे प्रदक्षिणा सांग सर्वदा वरदायकम। यहाँ पर राधा रानी भानु महल में विराजती है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सत्ययुग के आरंभ में 60,000 साल तपस्या किया था, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर अपनी सेवा में लग गए और फिर सत्ययुग के अंत में फिर 60,000 साल तपस्या किया, केवल 60,000। कुल मिलकर कितने हो गए? 120,000 साल तपस्या करने के बाद में उनको कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया और पूछा, आप क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपके राधा रानी के ग्वाल वालों के और गोपियों के चरणों की धूल चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि बरसाने चले जाओ, वहाँ पर पर्वत बनो। तो ये बात भी बहुत समझना ज़रूरी है, जब आप बरसाने में आए हो, हमारे या हमारे क्यों, सभी संप्रदायों के परम आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी तो है, सबसे प्रथम जीव है वो, द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। और वो यहाँ पर पत्थर बने हुए हैं। पत्थर बनने का मतलब क्या हुआ? निश्चेष्ट होना, निष्प्राण होना, इंद्रिय रहित होना, मान तो है ही नहीं उसके अंदर कुछ। फिर आपके ऊपर कुत्ता बिल्ली सुअर सब टट्टी पेशाब करेंगे, बंदर घूमेंगे, एकदम हम लोग यकीन नहीं कर सकते कि किसी एक महान व्यक्ति को अगर पत्थर बनना पड़ेगा तो एक्चुअली व्हाट इज दैट मीन, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। तो हमारे ब्रह्मा जी यहाँ पर एक परम आदर्श खड़े किए हुए हैं, यहाँ पर स्वयं पत्थर बने हुए हैं, और हम जैसे पापी लोग भी उस पर चढ़ते हैं अपने पापी पाँव लेकर। इसलिए बार बार हमको यहाँ पर आते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आचार्यों के आचार्यों के परम आचार्य ब्रह्मा जी महाराज यहाँ पर पत्थर बन के खड़े हैं और हम सब लोगों को उनके ऊपर से चढ़ना पड़ता है। इसलिए हम यहीं से उनको प्रणाम करते हैं, हे ब्रह्मा जी महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, हम आपके ऊपर चढ़ने के योग्य नहीं हैं, फिर भी राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए, श्रीमती राधा रानी को पुकारने के लिए आप हमें अनुमति दीजिए, आपको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए ब्रह्माचल पे जाकर कभी भी कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए, कोई ग्राम्य कथा नहीं करनी चाहिए। तो हर बार ध्यान होना चाहिए कि हम पूर्व कहाँ खड़े हैं, वेयर आर वी स्टैंडिंग। इस बात को गंभीरता से लेते हुए हर समय हमने कहा है कि केवल राधा रानी को पुकारने के लिए और देखने के लिए, दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, तो उसके अलावा कुछ प्रजल्प नहीं करना चाहिए। बड़े एकाग्र होकर, गंभीर होकर, हृदय के अंदर प्रार्थना करते हुए, कृपा याचना करते हुए, अपने आप को अयोग्य समझते हुए कंटिन्यूसली हमको यहाँ का समय बिताना है। रेडियो के अंदर होता है ना वो फ्रिक्वेंसी मैचिंग, जब तक हमारा कांटा जो है वो सही जगह पर नहीं आएगा फाइन ट्यून करके, तब तक वहाँ की पूरी आवाज़ बेस्ट तरीके से आप तक नहीं पहुँच सकती। उसी तरह से हमारी जो चेतना है उसका ट्यूनिंग अगर सही भावना में नहीं हो गया तो यहाँ की कृपा थोड़ी कम मिल सकती है आपको। इसलिए हमारी ऐसी प्रार्थना है सबको कि आप सब लोग बड़े गंभीर हो जाइए, पूरा समय आज का आपको दीपावली के इतने पवित्र दिवस पर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। श्री जी की असीम कृपा है, आपको उन्होंने दीपावली के दिन पर यहाँ बुलाया है। बड़ा पवित्र दिन है दीपावली। इस दिन भगवान को यशोदा माई ने मुकुल से बांधा था और ये दिन राधा रानी को बड़ा प्रिय है। ऐसे दिन में आपको उन्होंने यहाँ बुलाया है त्यौहार के दिन, तो ज़रूर आप मन को एकाग्र करके, जैसे होता ना भिंग, होता ना भिंग, लेंस लेंस, वो क्या करता है, ऐसा पकड़ेंगे सूरज में उसको, सूरज की सारी किरणों को ऐसे वो एकत्र करता है और वहाँ पर माचिस लगेंगे तो जल सकती है ना। इट कॉन्सेंट्रेट ऑल दी सन रेज एट वन पॉइंट, मेक्स इट वेरी इंटेंस एंड स्ट्रांग। उसी तरह से आपकी सारी चेतना जो है, आज तक आपने जितना भजन किया है, पूजन किया है, साधना किया है, सेवा किया है, सारा एक एक जगह बटोर लो आज, क्योंकि आज वो समय आपके लिए उपलब्ध है जिससे आप उसका पूरा लाभ और कृपा वसूल कर सकते हो। लेकिन चेतना सही होनी चाहिए तब आपको पूरा लाभ होगा उसका। तो और एक बात समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर राधा रानी बड़ी अनुकंपा करती है भक्तों के ऊपर। उनकी जो कृपा है यहाँ पर जो प्राप्त है वो कहीं भी विश्व में प्राप्त नहीं है। एक राधा कुंड स्थान है और एक बरसाना है, एक रावल है, यहाँ पर वो असीम कृपा करती है। इस कृपा का थोड़ा सा अंदाज आपको देने के लिए हम आपको एक अद्भुत कहानी बताएंगे। वो ऐसी है कि हम जानते हैं अश्वत्थामा महाभारत में आते हैं, अश्वत्थामा जी द्रोण के पुत्र हैं। वो अर्जुन का विरोध में दुर्योधन का साथ दिया उन्होंने, वहाँ तक तो ठीक था, दो पार्टियाँ हो ही गई थी, लेकिन आखिर में ये इतना भयंकर पाप करते हैं, उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं और रात को अंधेरे में जब सभी योद्धा लोग विजय प्राप्त करके, पांडवों के विजय प्राप्त करके सोते हैं, तो ये तंबू में एक एंड में जाकर आग लगाते हैं और जब आग के भय सब लोग भागते हैं तो दूसरे एंड में तलवार लेकर सटासट सबके शीश काट देते हैं। इतना भयंकर और घिलौना कृत्य करते हैं। उसमें द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं और द्रौपदी बहुत विलाप करती हैं, तो अर्जुन और भीम को बहुत क्रोध आता है। अर्जुन कृष्ण भगवान को सारथी बनाकर लेके जाते हैं और अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, वो भी रथ लेकर भागता है, उसके घोड़े के मुंह में झाग आता है तो रथ छोड़कर भागने लगता है, भगवान भी रथ छोड़कर उसके पीछे पैदल भागते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने लेके आते हैं और आप बोलो जैसे आप दंड देंगे उसको। द्रौपदी एकदम अद्भुत बात करती है, कहते हैं उसको माफ़ कर दो। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अर्जुन ने भीम तो उसको तुरंत सर्वनाश करने के लिए तैयार है, वो कहती हैं कि 5 पुत्रों को खोकर जो दर्द पीड़ा मैंने प्राप्त की है वो मैं गुरु माता कृपी को नहीं देना चाहती। भले ही इसने हमारा अपराध किया है लेकिन गुरु माता के हम ऋणी हैं, इसलिए उसको छोड़ दो। लेकिन भीमसेन कहते हैं कि मार दो। द्रौपदी कह रहे छोड़ दो। भगवान कहते हैं अर्जुन इसको मार दो और मत भी मारो। अर्जुन बड़े बुद्धिमान हैं, वो अश्वत्थामा के बाल नोच लेते हैं, कुछ कुछ निकालते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, मूछ आदि काट देते हैं, दाढ़ी आदि काट देते हैं और भगवान स्वयं जाकर उसका मणि काट लेते हैं और भगवान अश्वत्थामा को भयंकर शाप देते हैं। स्वयं भगवान इतने भक्तों का अपराध करने से भगवान को चिढ़ाती है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये जख्म जो है ये कभी नहीं भरेगा, इस जख्म से लगातार पीप और खून बहता रहेगा, इसमें इतना दर्द होगा कि तुम्हें मरने की इच्छा होगी लेकिन तुम मर भी नहीं पाओगे, पूरे विश्व ब्रह्मांड भटकते रहोगे, कहीं तुम्हारे दर्द का इलाज नहीं होगा और दर्द जो है दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और तुम सदा पीड़ित रहोगे। ऐसा अगर भगवान किसी को साथ देते हैं तो क्या गति होगी उसकी, जाओ अभी यहाँ से दफा हो जाओ, चला जाता है जंगल में, वन में, सब जगह पर रोता है दर्द के मारे, मरने की कामना करता है, मर नहीं सकता है, कोई इलाज नहीं है, खून बह रहा है, पीप बह रहा है, मणि जाने से सब निस्तेज हो गया है, जीवन बिल्कुल तुच्छ हो गया है, फिर भी मृत्यु नहीं आ रही है। तो समझ जाते हैं कैलाश में और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे स्वामी ने श्राप दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी
ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा भी वही कहते हैं हमारे स्वामी ने कुछ कह दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर भी गिड़गिड़ाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप ऐसा करो, एक मन में मेरे मन में ऐसा विकल्प आता है कि आप बरसाने में जाओ और वहाँ जाकर श्री जी की आराधना करो, राधा रानी को पुकारो, अगर हुआ उनका मन तो कृपा कर देंगे आपके ऊपर, आप चांस ले लो। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर अश्वत्थामा जी यहाँ पर आए हैं। ये बरसाना जो है बड़ा लंबा क्षेत्र है, इसके 2-4 किलोमीटर के परिघ के अंदर एक गांव आता है, इसका नाम है पिपासा वन। तो पिपासा वन ऐसा वन है जहाँ पर भगवान और राधा और कृष्ण अपने मिलन की प्यास, तीव्र उत्कंठा, पिपासा बुझाने के लिए रास करते हैं। उस रास करते हुए जब राधा रानी को प्यास लगती है तो वो कृष्ण भगवान कुंड बनाकर उनको पानी पिलाते हैं, जब कृष्ण को प्यास लगती है तो राधा रानी कुंड बनाकर उनको पानी पिलाती है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड भी उसमें विराजमान है और भगवान की वो परम प्रिय रासस्थली है, यहाँ पर नित्य भगवान रास करते हैं। वहाँ पर बैठ के उन्होंने राधा रानी को पुकारना शुरू किया, राधे राधे। बहुत देर तक सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए और रोते हुए अश्वत्थामा ने पुकारा तो राधा रानी ने उनको दर्शन दिया कुछ समय बाद और वरदान दिया कि आप दर्द मुक्त हो जाओगे, पीड़ा रहित हो जाओगे। अचानक उनका जख्म जो था सर का बुझ गया, मतलब सूख गया, इट वॉट हील्ड। और उन्हें वरदान किया कि आप दर्द से मुक्त हो जाओगे, पीड़ा से मुक्त हो जाओगे, जख्म भी भर जाएगा। तो अचानक वो सभी भगवान के श्राप से मुक्त हो गए और उन्होंने उनको वरदान दिया कि आप यहीं रहो, ये हमारा बहुत प्रिय स्थान है, हम लोग यहाँ पर दोनों मिलकर रास करते हैं, इस स्थान की आप रक्षा करो और यहीं रहो, इस वन की रक्षा करो। अश्वत्थामा जी आज अभी भी पिपासा वन में निवास करते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं वो उनका दर्शन भी करते हैं और जो भी वहाँ पर लकड़ी लेके जाते हैं, अगर भगवान की सेवा में लेके गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वार्थ के लिए कोई लकड़ी लेके जाता है तो वो अंधा हो जाता है, या तो उसको पैरलिस का झटका आता है, या तो मर जाता है। इसलिए लोग जब भंडारे के लिए, भगवान की सेवा के लिए जब लेके जाते हैं तो बचा हुआ लकड़ी वहाँ पर आकर रचा के रखते हैं। इसलिए पिपासा वन में सब जगह पर लकड़ियाँ ऐसे आपको रचाई हुई नज़र आएगी, क्योंकि भाव वहाँ का ऐसा है। अश्वत्थामा जो रक्षा करते हैं, अश्वत्थामा जैसा पापी भी अगर राधा रानी के चरणों में वरदान प्राप्त कर सकता है तो हमारे लिए भी कुछ आशा है। ये कहानी सुनकर हमको थोड़ी आशा मन में उपलब्ध होती है कि हमें भी थोड़ी सी कृपा मिलेगी यहाँ पर, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? अश्वत्थामा ने क्या किया? हृदय से, पूरे एकाग्रता से और पश्चाताप की भावना से उन्होंने पुकारा। राधा रानी बहुत भोली है, वो बहुत सीधे हृदय की है और बहुत कृपा करने के लिए उत्सुक रहती है, केवल मांगने वाला जो है वो सही भावना में होना चाहिए। ऐसे एक बार एक भंगी यहाँ पर राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियाँ को बुहारी कर रहा था और बड़े प्रेम से पुकार रहा था, राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्याम सुंदर, बड़े प्रेम से आंखों में आंसू लेकर वो झाड़ू लगा रहा था। उसके भाव से राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई कि कृष्ण को लेकर वो जहाँ पर झाड़ू लगा रहा था उसके ऊपर ऐसे डाल के दोनों आके बैठ गए ऐसे पैर हिलाते हुए। और राधा रानी कहते देखो कितना अच्छा भक्त है, कितने प्रेम से पुकार रहा है, कितना हृदय उसका निर्मल प्रेम से भरा हुआ है, कुछ कृपा करो उस पर, मुझे तो लग रहा है कुछ कृपा होनी चाहिए उसके ऊपर। तो क्या करूँ? श्याम सुंदर पूछते हैं, कहते हैं तो अंगरखा पहन के रखा है ना, ये उसको दे दो। तो श्याम सुंदर कहते हैं नहीं नहीं बाबा ने दिया है मुझे, बाबा डांटेंगे, शाम को पूछेंगे अंगरखा कहाँ गया, सुबह पहना के भेज दिया था, शाम को खोकर आए हो, मैं नहीं दूंगा। राधा रानी नहीं नहीं दे दो वो तुम्हारे अंगरखा प्राप्त करने के योग्य है। फिर भी ठाकुर जी मना कर देते हैं, बहुत जिद होती है। राधा रानी कहती हैं कोई बात नहीं, मत दो आपका अंगरखा, मैं मेरी शाल जो मेरी मैया ने दी है वो उसको दूंगी। तो अपनी शाल निकालती है हाँ और उस पर डालती है ऊपर से, वो भंगी झाड़ू लगा रहा है और उसके ऊपर वो शाल गिरती है तो वैसे ही उस कांपने लगता है, आंखों से अश्रु होकर वहीं बेहोश हो जाता है। अब ये शाल जो राधा रानी की है उसका महात्म्य ऐसा है कि ये शाल जब राधा रानी पहनकर चलती है तो मंद मंद हवा जैसे अभी बह रही है, देखो वायुदेव भी ऐसे बहुत अच्छी भावना में यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करते रहते, तो मंद मंद शीतल वायु लहरी ऐसे सुंदर सुंदर फूलों के खुशबुओं को पुख्ते सरों को लेकर ऐसे बह रही थी, और वो राधा रानी के जो शॉल है उसको छूती है और वहाँ से परावर्तित होकर आती है. द ब्रीज गोज टचेस द शॉल ऑफ राधा रानी एंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देयर. उस दिशा में कृष्ण खड़े रहते हैं और उस वायु के नहीं, उस दिशा को जहाँ से वो वायु आ रही है उसको प्रणाम करते हैं. राधा सुधानिधि में श्लोक है, नंबर वन का श्लोक है कि जिस शॉल को छूकर हवा आती है उस हवा की दिशा को कृष्ण भगवान प्रणाम करते हैं. अभी वो हवा उसके बाद में शॉल है, पहले दिशा है फिर हवा है फिर शॉल है. वो शॉल उस गंगे को मिली, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी कृपा है. तो ऐसी अनंत कृपा यहाँ पर राधा रानी करती रहती है. इसलिए अपना जो पात्र है वो रेडी रखना चाहिए. मराठी में एक कहावत है, ताकाला जाऊन भांडा लपू नहीं. अगर आपको छाछ चाहिए ना तो अपना बर्तन जिसके लिए आप लाए हैं छाछ के लिए उसको छुपा के मत रखना. छाछ चाहिए तो उसको खुला रखना, हाँ जब भी मिलेगा तुरंत भर लेना उसके अंदर. वैसे अपना जो भिक्षा का पात्र है आज आपको खाली पात्र ऐसा आगे करके चलना है और पुकारते पुकारते जाना है, हाँ राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़ के आएंगे. तो ऐसा ये धाम है बरसाना. और यहाँ पर जब ब्रह्मा जी पर्वत बने तो ब्रह्मा जी चार मुख वाले हैं और इसलिए वो पर्वत भी चार मुख का है. इस धाम का नाम है वर्ष्यानु, यानी कि जिस गांव में सुंदर सुंदर पर्वत की चोटियाँ हैं बड़ी आसानी से चढ़ने लायक है उसको वर्ष्यानु कहते हैं. चांडिल्य मुनि वर्णन करते हैं, जयदेव गोस्वामी उसको वृषभानुपुर कहते हैं, वृषभानु गृह करके पुकारते हैं. और एक अर्थ उसका है बरसाना, यहाँ पर प्रेम का रस हमेशा बरसते रहता है इसलिए इसका नाम बरसाना है, वर्षा होते रहता है यहाँ पर. तो चार पर्वत है यहाँ पर, एक है भानुगढ़, एक है दानगढ़, तीसरा है विलासगढ़ और चौथा है मानगढ़. तो भानुगढ़ जो है वहाँ पर राधा रानी अपने माता पिता के साथ में रहती है, वो उनका घर है. उनका जन्म रावल में हुआ है, किसी कल्प में प्रियाकुंड में भी हुआ है, किसी कल्प में भानुखर बाजू में उसमें भी हुआ है, किसी कल्प में पर्वत पर भी हुआ है. ऐसा अलग लीला ठाकुर जी करते हैं उसमें, लेकिन रहते तो है परमानेंटली किसी भी कल्प में भानुगढ़ पर. वहाँ पर बड़े प्रेम से तुलती मैया और विश्वानु महाराज राधा रानी को बाल लीलाओं के लिए संगोपन करते हैं, लालन पालन करते हैं. बड़ी सुंदर सुंदर लीला है वहाँ पर. एक लीला मैं बताऊँगा आपको, बहुत सारी लीलाएँ हैं लेकिन एक लीला भी काफ़ी है उसका आनंद लेने के लिए. कृष्ण भगवान बड़े चोर हैं, हर समय बात करते करते कभी यहाँ का मणि छीन लेते हैं राधा रानी का, कभी यहाँ का छीन लेते हैं, कभी पीछे का कुछ छीन लेते हैं, कुंडल छीन लेते हैं. बात करते करते इतना मशगूल कर देते हैं कि कभी खोते हैं कभी छोड़ते हैं, पता नहीं चलता है. जब घर जाते हैं तो पता चलता है, अरे अरे श्री जी यहाँ का मणि किधर गया, अरे पता नहीं किधर गया. कभी कभी ये पकड़ लेते हैं उसको, जेब में हाथ डालते हैं उसके तो वो मणि मिल जाता है. वो कहते हैं कि मेरा हाथ जो है ना वो मेरे काबू में रहता ही नहीं है, कब आपके अलंकार के पास जाता है और कब वहाँ उसको निकालते हैं और कब मेरे जेब में आता है मुझे खुद पता नहीं चलता है. तो मुझे बुरा मत मानना, मतलब ले लेना वापस, कोई बात नहीं. फिर मक्खन चोरी करते हैं, फिर वो रोस्ते में रोकते हैं, क्या क्या नहीं करते, हमेशा तंग करते रहते हैं. सब गोपियाँ सोचती हैं कि अभी एक बार उनको अच्छा सबक सिखाएंगे हम लोग. तो एक दिन बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर लाते हैं, जो पसंद का सामान है सब बनाकर लाते हैं, सब गोपियाँ लेके आते हैं. और आते ही वाद विवाद करने के पहले वो बोला, बैठो बैठो बैठो, आपको भोजन बनाना है परसना है. तो भगवान को सभी गोपियाँ आग्रह कर करके इतना खिलाते हैं कि पहले वो ऐसे सीधे बैठ रहे थे, बाद में ऐसे बैठ जाते हैं पूरी तरह सो जाते हैं, फिर भी खिलाते हैं सो के भी खिलाते हैं, खाओ और खाओ. इतना खा के एकदम गहरी नींद सो जाते हैं. पूरा गहरी नींद सोने के बाद में सब दफ्तकियाँ देखते हैं, अभी एकदम ढेर हो गया पूरा. तो उसके यहाँ से लेकर पैर तक सारे गहने निकाल लेते हैं. शुदा माई ना बहुत बड़ा श्रृंगार करते हैं, सुबह सुबह बहुत समय लगता है उसको. यहाँ से लेकर वो सोने की जंजीर में मोर पंख लगाती है, फिर उसके ऊपर पेटा लगाती है, फिर उसके ऊपर डिज़ाइन बनाती है, फिर कुंडल लगाती है, फिर गले में हाला, फिर हाथ में तलाई बंद, बाजू बंद, कमरधनी, हाँ फिर घुंघरू, बड़े कस के घुंघरू बांधते हैं वो, क्योंकि नाचते हैं ना तभी दो दो मील घुंघरू उड़ते हैं. तीन बांध के थे घर में आते दो ही होते हैं, कभी एक ही होता है,
बोले कहाँ गए दो, पता नहीं कहाँ गए, जंगल में उड़ गए। तो सारे वात्सल्य रस में लगाए हुए श्रृंगार सारे निकाल लेते हैं, मुरली भी ले लेते हैं, हाँ मोरपंख भी उतार लेते हैं। तो उनका क्या कहते हैं उसको, सिंबल है ना, वो आईडी कार्ड है उनका मोबाइल जैसे मोरपंख और मुरली सब लेके श्रृंगार लेके जाते घर पे। बहुत देर के बाद में थोड़ा सा डाइजेशन होने के बाद में उनको नींद खुलती है और कोई नहीं वहाँ पर जंगल में, अकेले पड़े हैं, ना कोई सखी है ना कोई सखा है। और जब उठ के देखते हैं तो क्या, सारा खाली सामान, पूरा खाली, कुछ भी नहीं है। तो जानते हैं अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि सब गोपियों ने चुन लिया है। तो बात नहीं, घर में जाते हैं, मैया बड़ी आश्चर्य करते हैं, अरे एक भी श्रृंगार नहीं आज तुम्हारे पर, हर बार तो कुछ 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 खो के आते हो, तो पूरा खो गया है, हाँ व्हाट इज दिस। तो मैया कोई बात नहीं, आप एक दिन का इंतजार करो, कल तक मिल जाएगा सब। जैसे हमारे पुलिस स्टेशन में जाओगे ना आप, कुछ कंप्लेंट होंगे तो बोलेंगे 5,000 रुपये दो, सब मिल जाएगा, गारंटी है। उनको पता है उनको इस टाइम पे कौन कहा करता है, एवरीथिंग दे नो, हु इज़ द चोर, एवरीथिंग। तो ऐसे एकदम विश्वास के साथ में मैया को बोलते हैं कल तक मिल जाएगा, जाके सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो एक सुंदर सी सखी पूरा घूंघट ओढ़ कर श्रृंगार करके मैया के पास आती है, वो चरण छूती है। तो मैया कहती है, अरे नहीं नहीं ब्याही हो क्या नंदगांव में? तो ऐसे ऐसे कहती है, हाँ हाँ चरण छूती है, आशीर्वाद चाहती हूँ, आज बड़े महत्वपूर्ण काम में जा रही हूँ इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। ये इसका मधुर भाव देखकर यशोदा मैया बड़े प्रसन्न हो जाती है, आशीर्वाद देती है, हाँ बेटी जो भी देना आशीर्वाद दे देती। फिर उसने में वो लड़की जो है घूंघट उठा दी, अरे तुम श्याम सुंदर, अरे ये क्या भेष बना लिया है? नहीं मैया कुछ विशेष काम है इसलिए आज मैंने, इसलिए आशीर्वाद दे दो मैं जा रहा हूँ अभी। तो कृष्ण भगवान ही सखी बनकर जा रहे। फिर बरसाने में आते हैं और कन्हैया कहकर बेहोश हो जाते, तो सब सखियाँ भाग के आती, अरे क्या हो गया क्या हो गया? बोले नई नई बहू आई है, नई नई ब्याही हुई गांव से, क्या प्रेम है उसके अंदर, उसको हवा देते हैं, उसको जगाते हैं, फिर वो जग जाते हैं, फिर शाम करके फिर बेहोश हो जाती है, तो और सखी आ जाती है, फिर वो जगाती है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर श्याम सुंदर कन्हैया नंदन नंदन यशोमती नंदन, ऐसे हर बार पुकारते हर बार बेहोश हो जाते। तो सभी सखियाँ और संख्या में और संख्या में और संख्या में और संख्या में इकट्ठा होती। और तब तक तो ये पहुँचते हैं श्री जी के महल के दरवाजे पर, वहाँ पर जाके जोर से पुकारते हैं मुरली मनोहर और बेहोश हो जाते हैं। और इस बार सभी सखियाँ हर प्रकार का प्रयत्न करती हैं, हर प्रकार का प्रयत्न करती है, कुछ भी नहीं होता है। फिर रुई लेके आते हैं और नाक पे लगाते हैं, वहाँ पर भी हवा नहीं हिल रही है। तो सखियों को लगता है कि गई काम से, अभी तो ये शरीर छोड़ के चली गई। तो सब सखियाँ परेशान हैं क्योंकि उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है कि हमसे ज़्यादा कोई प्रेम करता है कृष्णा से, ऐसा कोई ईर्ष्या नहीं है। सब लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत अनोखी सखी है, इतना प्रेम तो हमारे अंदर भी नहीं है, इतनी सखी जो है नाम पुकार के मर रही है, शरीर छोड़ रही है, तो कुछ करना चाहिए। तो कोई संकट समस्या होती है तो ललिता विशाखा मेन सखियाँ हैं, वो आके मीटिंग करती हैं, डिस्कस करती हैं, बहुत डिस्कस करते हैं, कोई उपाय नहीं सोचता, क्या करे क्या करे क्या करे। अचानक ललिता कहती है, अरे अभी तो श्रृंगार चुराया था ना सब कुछ कृष्ण का, चलो यहाँ पर कृष्ण तो है नहीं, अभी हम राधा रानी को बुलाकर उनका श्रृंगार करते हैं कृष्ण के रूप में, उनको पीताम्बर पहनाते हैं, उनको सब कुछ श्रृंगार और मुरली त्रिभंग अवस्था में खड़े कर देते हैं ताकि उसको देख कर थोड़ा इसका विरह जो है वो शांत हो जाएगा। तो फटाफट कुछ गोपियों को यहाँ रखते हैं, उस गोपी के हवा देने के लिए, पानी देने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए प्रयास करने के लिए, और कुछ सखियों को भाग के अंदर भेज, जाओ जाओ तुरंत जाके श्रृंगार करो, जल्दी से जल्दी करो। तो सब सखियाँ जाती हैं भाग भाग के, इनको हवा देती है, कुछ सखियाँ जाकर श्रृंगार करती है और राधा रानी को श्याम सुंदर बना कर लेके आती है। बोलते ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े जाओ, ये पाँव यहाँ रखो, थोड़ा सा यहाँ पर झुको, गर्दन को झुकाओ, ऐसे मुरली पकड़ो, ऐसे करके खड़े कर देते हैं। और फिर सखी को बोलते हैं, हे सखी देखो उठो उठो देखो श्याम सुंदर आए हैं। तो सखी जो कूदती है अपना पल्लू उठा के ऐसे जोर से कूदती है, देखो पकड़ लिया तुमको बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, रंगे हाथ पकड़ा है। सब लोग एकदम दंग हो जाते हैं, अचानक क्या हो गया, अभी तो सब लोग रो रहे थे कि सखी जा रही है, सही छोड़ रही है, अचानक वो जंप मार के उठता है। ना पल्लू वल्लू सब फेंक देता है। तुम लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन मेरे सामने आपकी होशियार नहीं चलने वाली। चलो उतारो सब कुछ उतारो। तो सारी गोपियाँ सर झुकाकर नम्र होकर एक एक करके सारा गहना उतारते हैं, और जैसे जैसे उतारते हैं वैसे ऐसे पहनते जाते हैं, और ठाट से एंड में हरे कृष्णा चले जाते हैं। तो ये भानु महल की लीला है। वहाँ पर कभी वो कृष्ण भगवान ऐसे गोपियाँ कहती है कि अरे आपका तो कुछ पता ही नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं आपका, जब भी देखो तो आप यहीं पड़े रहते हो परसाने में, रास्ते में खड़े रहते हैं। उनको वहाँ पर चैन ही नहीं रहता है राधा रानी को छोड़कर। तो यहाँ पर आके कभी कंकड़ बीनते हैं, कभी फूल बीनते हैं, कभी रास्ता पर पंखुड़ियाँ बिछाते हैं, और बार बार ताकते रहते हैं। तो गोपियाँ पूछते हैं अरे ठाड़े महाराज क्या कर रहे हो यहाँ पर? नहीं वो पत्थर कंकड़ बीन रहा हूँ। कोई आती गोपी अरे महाराज क्या कर रहे हो, क्यों ठाड़े हो वहाँ पर? नहीं वो फूल की पंखुड़ियाँ बीन रहा हूँ। मतलब लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। एक ही दृश्य है उनका कि राधा रानी कहाँ से आ रही है, कहीं पड़े रहते हैं वहाँ पर, उनको चैन नहीं होता है। तो ऐसा ही अद्भुत धाम है, और इतनी प्रेम की अंतरंग लीला यहाँ पर होती है, इसलिए यहाँ पर राधा और कृष्ण ने राक्षस को नहीं आने दिया। इतनी उत्कट लीला होते हुए अगर कोई ऐसा आ गया कोई गर्जना करते हुए तो मूड बदलेगा ना तुरंत, ऐसा वो उसको बांध बांध के पूरा आना पड़ेगा ना युद्ध खेलने के लिए। तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये जैसे कि हमारा घर होता है ना, वैसे बहुत सारे बड़े बड़े घर होते हैं किसी धनी आदमी के, तो बैठने का कमरा होता है, दो चार खाना खाने के कमरे होते हैं, बड़ा रसोई घर होता है, फिर दो चार बेडरूम होते हैं, और उसके अंदर एक बड़ा प्राइवेट बेडरूम होता है जहाँ पर कोई नहीं आता है, अंतपुर कहते हैं उसे, है ना, अंतर कक्ष। तो पूरा वृंदावन धाम भगवान का घर है, लेकिन बरसाना जो है उनका अंतपुर है, वहाँ पर एकदम अंतरंग मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मोस्ट प्राइवेट लीला यहाँ पर होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर, अयोग्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। कृष्ण भगवान को भी चुनरी ओढ़ के आना पड़ता है। अभी आप जाएंगे ना ऊपर दर्शन करने के लिए, तो राधा और कृष्ण खड़े हैं वहाँ पर लाड़ी लाल। उन मूर्तियों को वज्रनाभ ने स्थापन किया था, भगवान के प्रपोत्र हैं वो, ग्रेट ग्रैंडसन, रुक्मिणी के पुत्र, प्रद्युम्न के पुत्र, अनिरुद्ध के पुत्र हैं वो वज्रनाभ जी। और जब राजा परीक्षित विश्व के सम्राट बने तो उन्होंने वज्रनाभ को ब्रज का राजा बना दिया, ब्रज को पुनर्स्थापित करने के लिए। तो वज्रनाभ ने नंदगांव में कृष्ण बलराम यशोदा माई नंद महाराज का मूर्ति स्थापना किया, यहाँ पर लाडली लाल का मूर्ति स्थापना किया। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान क्यों रहते हैं? वो तो उनका घर नहीं है, तो घर नंदगांव में है। तो उसके भी कारण बताए गए हैं, तीन कारण हैं उसके। तो इन मौके पे कारण गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका कारण ये है कि वो कृष्ण भगवान राधा रानी को इतने प्रिय हैं कि वो कहते हैं कि तुम यहीं बस जाओ, और मैया बाबा कहते हैं कि लाली पर इतना प्रेम है कि उसको ससुराल नहीं भेज सकते हैं, इसलिए आप यहीं रह जाओ। तो घर जमाई बद के उनको ये रखते हैं, लेकिन रखते हैं तभी चुनरी ओढ़कर रखते हैं। अभी आप जाएंगे ना दर्शन करने के लिए, ठीक से देखना, लाडली लाल यानी कृष्ण भगवान के ऊपर एक ऐसा लंबा चुनरी ओढ़ा रहता है, सखी बनकर रहते हैं लेकिन राधा रानी के पास में रहते हैं। तभी सब लोग आप यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और श्री जी मंदिर का मंत्र आपसे यहीं बुलवाते हैं। आप लोग यहाँ हाथ जोड़कर श्री जी मंदिर का मंत्र बोलिए, सब लोग हाथ जोड़िए। नमः प्रियायै राधायै, नमः प्रियायै राधायै, ब्रह्मणो वरदायिने, ब्रह्मणो वरदायिने, सर्वेष्ट फल रम्याय राधा कृष्णाय मूर्तये, राधा कृष्णाय मूर्तये। हे राधा रानी, हम आपको प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान से आप यहाँ पर ब्रह्मा जी को वरदान दिए हुए हैं, उन पर भानुगढ़ में विलास कर रहे हैं। आपके दर्शन प्राप्त करने से सब प्रकार की इच्छाएं सर्वेष्ट फल रम्याय, सर्वेष्ट जो भी इष्ट है वो सब इष्ट राधा रानी और आप पूरा करते हैं, आपको हमारा नमस्कार है, ऐसे इस मंत्र का अर्थ है। तो इसलिए आप सब लोग
बड़े अच्छे भाव से नम्र अपने आप को बनाकर प्रार्थना करते हुए रोते हुए पुकारते हुए जाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए, क्योंकि राधा करानी की कृपा में इतनी शक्ति है कि एक कृपा कटाक्ष से हम सभी पापों से मुक्त होकर हृदय प्रेम से संपृक्त हो सकता है। शिव जी ने एक स्तोत्र लिखा है और अपने पत्नी को भेंट दिया है, ही हैज गिफ्टेड हिज वाइफ विथ वन वेरी ग्रेट कंपोजिशन, उसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष। उसमें एक लाइन हमेशा आती है, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। ये जो कृपा कटाक्ष है राधा रानी की भक्त याचना करता है, कब आप राधा रानी कब कृपा करोगी, कब आपका कृपा कटाक्ष हम पर डालोगी, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा, ऐसे हमको पुकारना चाहिए। कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी राधा रानी, कब कृपा करोगी, क्योंकि इन्हीं की कृपा में सब कुछ समाया हुआ है। सारे रहस्य जो भक्ति के हैं, जो कृष्ण भी नहीं जानते हैं, वो सारे रहस्य इनकी कृपा में समाये हुए हैं। ये कृपा अधिष्ठात्री है, द डिपार्टमेंट ऑफ कृपा, शी इज द HOD। ये कृष्ण हृदय संजीवनी है, कृष्ण के हृदय को जीवित रखने की जो शक्ति है वो इनकी कृपा में है। अगर कृष्ण प्रेम एक सागर की तरह है, उसका मंथन किया जाए और उसका लोणी नवनीत निकाला जाए, तो उस कृष्ण प्रेम के सागर का मंथन किया हुआ जो लोणी है वो राधा रानी का प्रेम है। इतना कॉन्सेंट्रेट है सर, हमारी समझ में नहीं आ सकता ये सब कुछ। हम खाली इतना ही समझ सकते हैं कि हमको यहाँ पर भिक्षा मांगनी है। भिखारी को जिसके घर में भिक्षा मांगने जा रहे हैं उसके घर में कितना धन है ये जानने की जरूरत नहीं होती है, उसको खाली पता होना चाहिए कि यहाँ पर अच्छी तरह से भिक मांगना है, ताकि जिसको देना है वो बाहर आकर भर भर के दे दे। इतना मंत्र आपको मालूम पड़ा तो बहुत हो गया, बाकी कितना धन वहाँ पर छुपा हुआ है नो नीड टू नो, उसको समझ में आने का चांस भी नहीं है। इसलिए सब लोग जाओ और पुकारते हुए जाओ, रोते हुए जाओ और अपने जीवन को धन्य कर लो। दिवाली का दिन है, ये आपके गौलोक जाने का संकल्प यहाँ पे हो सकता है।
जय जय श्री राधे।
अभी यहाँ की कथा सुननी है कि नहीं सुननी? भूल ही गए इसको बताने के लिए। तो ये स्थान जो है ये पीली पोखर है, इसका नाम प्रिया कुंड है। एक्चुअली ये विश्वभानु महाराज का प्राइवेट कुंड है, अनेक उनके कुंड है, उसमें से प्राइवेट एक कुंड है ये प्रिया कुंड। यहाँ पर विश्वभानु महाराज रोज स्नान करते हैं और राधा रानी भी उनके कन्या होने के नाते रोज स्नान करती हैं। तो बड़ी लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट में बताते हैं कि दुर्वासा महि ने राधा रानी को वरदान दिया था कि आपके हाथ से जो बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो भी इसको खाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा और हमेशा सदैव विजयी रहेगा। तो ये खबर इतनी तेज फैल गई, नंदगांव तक पहुंच गई, यशोदा रानी को भी पता चला। तो उन्हें सोचा कि इसके अच्छा भोजन और कहाँ मिलेगा मेरे कन्हैया के लिए। तो एक सुंदर प्रसंग था, वो भी कीर्ति महारानी के महल में हुआ था, कि बड़ा उत्सव यहाँ पर हो रहा था। उस उत्सव में चांस लेकर यशोदा माई जाती है रसोई घर में, देखती है कि अरे इतनी एक कन्या, अकेली छोटी सी कन्या, कितने हजारों गोपियों को सेवा में लगाकर अनेक चूल्हे एक बात एक साथ चला रही है, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बना रही है। तो अकेले में लेकर कीर्ति मैया से यशोदा माई पूछती है कि क्या ये हमारे यहाँ पर भोजन बनाने के लिए आ सकती है क्या? बड़े प्रेम से उसको हाँ बोलती हैं। फिर तब से सिलसिला शुरू होता है, रोज़ जाकर आना, भोजन बनाना, कई सुंदर लीलाएँ वहाँ पर है भोजन की। लेकिन एक दिन जैसे बोलते ना, ध्यायते विषया पुंसा, जो हमारे प्रिय विषय है जो रोज़ नज़र में आ जाए तो क्या होता है, आपको जलेबी चाहिए अच्छी लगती है और रोज़ जलेबी की दुकान से आप गुजर रहे हो तो क्या होता है, मुँह से पानी आने लगता है। एक दिन 5 ml, अगले दिन 10 ml, अगले दिन 15 ml, अगले दिन एक बकेट, फिर खाना पड़ता है एक दिन जलेबी हो। तो वैसे इतनी प्रिय सुंदर सुशील सद्गुण संपन्न कन्या रोज आकर वहाँ भोजन बना रही है। तो एक दिन रहा नहीं जाता है, ऐसे गले लगाते हैं उसको, प्रेम से आलिंगन देते हैं, अश्रु बहाते हैं और उस भाव विभोर अवस्था में जाकर हल्दी लेकर उसके हाथ में मल लेते हैं। और हमारे संस्कृति में हल्दी मलने का मतलब है कि बहू बनने का संकल्प कर लिया, भाग निश्चय बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट, बेट्रोथल। तो राधा रानी बहुत शर्मा गई, बड़े खुश थे सब लोग, सुधा मई भाई भाव विभोर थी। और फिर शाम को निकले राधा रानी, ललिता, विशाखा, और इतने आनंद में थे, आनंद में थे, आनंद में बरसाने की कक्षा में आए, सीमा में आए, तो होश में आ गए। अरे मैया को तो पूछा ही नहीं, बिना पूछे किसी के घर में गए और हल्दी लगा के आ गए। मैया क्या बोलेगी, ये सिखाया था क्या, ये संस्कृति हमारी, ये संस्कार है हमारे। डर गए, बहुत डर लगने लगा, अरे अभी क्या होगा। तो फिर ललिता विशाखा, हाँ चीफ काउंसिल विशाखा देवी एडवाइस में बहुत एक्सपर्ट है, और ललिता देवी कुछ आतंक आया तो सामने आके शी इज़ लाइक फ्रंट वॉरियर। विशाखा देवी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी पीसफुल एंड वेरी थॉटफुल एंड शी गिव्स गुड एडवाइस। तो वो कहते हैं कि अरे तो प्रिया कुंड आ गया, इसमें हाथ धो लो आप, अच्छी तरह से हम घिस घिस के धोवा लेंगे उसको, किसी को नहीं बताएंगे। तो ठीक है, तय हो गया, तुरंत हाथ धो लिया, हाथ पहले जैसा हो गया, सब लोग चुपचाप अपने घर पे चले गए। लेकिन यहाँ पर अगर कहानी रुकती तो कैसे होता दूसरे दिन देखो आप लोग यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं ऐसे सब, तो लोग आते हैं ब्रजवासी लोग अपना अपना रोज दिन कर्म करने के लिए, देखते अरे तो ये कुंड तो पीला हो गया है, कल तो ट्रांसपेरेंट था, अभी तो पीला रंग का हो गया है। तो वो एक और एक और एक और एक जोड़ देते हैं और अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं। अरे हाँ वो तो रोज जाती है वहाँ पर खाना बनाने के लिए, यशोदा रानी के मन में भी वही विचार है उसको बहू बनाने का, तो भाव विभोर हो गई होगी, हल्दी लगा दिया होगा और शर्मा गई होगी, डर गई होगी, हाथ धोया होगा, अपने घर चली गई होगी। तो पहले तो इट्स अ स्पेकुलेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेकुलेशन, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रुथ। और जाके इस कहानी को पूर्णता सच मानकर सब ब्रजवासी पहुँचते हैं कीर्ति महारानी और विश्वानु महाराज के महल में और पूछते हैं अरे सुना तुमने, हमने सुना कि आपके राधा रानी का सगाई हो गया है। अच्छा, तो बड़ा परेशान होते हैं विश्वानु महाराज, अरे ऐसे कैसे होता है, हमको तो पता ही नहीं कुछ। नहीं नहीं देखो यशोदा माई ने हल्दी लगाई, फिर वो डर गई, यहाँ पर हाथ धोए, देखो पूछो उसको, पूछो पूछो। तो उसको बुलाते हैं, इतना संकोच कि देखो गांव पूरा खड़ा है और ऐसा प्रश्न कर रहा है संकोच वाला। कभी कभी आपको लड़की होगी तो आपको ऐसा अनुभव आता होगा, कभी कभी कुछ कुछ बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। हम बोले हमको तो पता नहीं, अरे पूरा गांव जानते हैं, आपको पता नहीं तो राधा रानी को कुछ पूछा, क्या ऐसे सच है ये। राधा रानी ने सर झुका दिया, बड़ी शर्मिंदा हो गई। वहाँ पर क्या हो रहा है नंदगांव में, सीन वन अभी कंटिन्यू हो रहा है वहाँ पर, ये सीन टू है। सीन वन में क्या हो रहा है, यशोदा माई भी थोड़ी देर बाद में भाव विभोरता की स्थिति से होश में आती है, बड़ा पश्चाताप करती है, रोती है, अरे मैंने क्या कर दिया, वो बरसाने वाले क्या कहेंगे, यही संस्कार है इनके, किसी की लड़कियों को बुला लेते हैं और उस बहाने अंदर ले जाकर हल्दी लगा लेते हैं, तो कोई संस्कार है, नंदगांव वालों के संस्कार यही होते हैं। ये सोचकर कीर्ति मैया हमको कितनी बुरी बुरा भला कहती होगी, अभी क्या सोचती होगी कि हमारी यशोदा रानी कैसी है, क्या नंदगांव का ये रीति रिवाज है। तो बड़ा दुखी होते हैं नंद महाराज, बड़े दुखी होते, तुमने कैसे गलती कर लिया, ऐसे कैसे तुम करती हो, उनको सोचना चाहिए करने के पहले, पूछ लिया होता उनको फोन करके अभी क्या करें, हाथ से गलती तो हो गई है। तो बड़े परेशान है, क्या सोचते होंगे। तो यहाँ पर जैसे राधा रानी हाँ बोलती है, कीर्ति महारानी बड़ी खुश हो जाती है, तुरंत विश्वानु महाराज अपने अनंत भंडारों में से एक भंडार खोल लेते हैं मोतियों का और बैलगाड़ी में भरते हैं। 1 करोड़ मोतियों की माला बनाकर बैलगाड़ी में भरते हैं और एक ब्राह्मण को दूध बनाकर भेज देते हैं, वी अप्रूव योर आइडिया एंड एक्शन। ब्राह्मण ये दुखी बैठ रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं बचाने की ओर, दूर से गाड़ी आ रही है बैल की, इतनी चमकदार उसमें मोती पड़े हुए हैं और ब्राह्मण बड़ा उत्सुकता से धाप भाग पक के आ रहा है, अरे हाँ बरसाने का ब्राह्मण है ये, इनका ही दूत है, पता नहीं क्या अभी होगा। वाके बोलते हैं आपने जो भी कुछ किया है, कीर्ति महारानी और विश्वानु महाराज बड़े खुश हैं और इस खुशी में उन्होंने आपके लिए भेंट वस्तु भेज दिया है, ये आपके लिए नजराना है, 1 करोड़ मोतियों की माला है। तो बोलते अरे बच गए, राम राम बच गए। तो फिर वो सोचते हैं इतने कीमती मोती है तो कैसे करेंगे, हमारे पास तो इतने कीमती मोती नहीं, हमको भी रिटर्न गिफ्ट भेजना चाहिए ना। तो दुखी थोड़ा चिंता करते हैं कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे, हमारे पास तो इतने कीमती मोती नहीं है। तो कृष्ण भगवान सुन रहे हैं सब कुछ, तो जाकर 100 मालाएं उसको से छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। सुबह मैया उठती है और देखती है अरे 100 माला कम है इसके अंदर, किसने चोरी किया। तुरंत उसका उत्तर मिलता है, अरे पूरे ब्रज का जो चोर अग्रगण्य शिरोमणि है वो तो मेरे घर में बैठा है, पकड़ते इसको, बोलते क्या हुआ श्याम सुंदर जी, सौमाला किधर है? बोले मैया कल तो आप लोग दोनों चिंतित थे, बहुत देर तक डिस्कस कर रहे थे क्या करें क्या करें, तो मैंने सोचा कि थोड़े मोती ले जाए और खेत में बो दिए जाए। मैं देखता हूँ आप जब एक चावल बोते हो तो 250-300 चावल बनते हैं एक चावल, पता है आपको खेती का इक्वेशन क्या होता है? एक गेहूँ का 250 गेहूँ बनता है, एक चावल का 250 चावल बनता है। तो वैसे ही मैंने बो दिया उसको, आपकी चिंता का समाधान करने के लिए मैंने उसको बो दिया है, ज़मीन को खोद के उसमें मोती डाल दिए, ब्रज ब्रज डाल दिया, जल सिंचन करके अभी आ रहा हूँ, अभी चलो आप खेत भरे हुए मिलेंगे आपको। तो ये ठाका मार के हंसते पेट भर के जोर जोर से, अरे बालक को पता नहीं है तो उतना इनोसेंट है, इसको पता नहीं है कि धान की खेती होती है, थोड़ी मोती की खेती होती है। नहीं नहीं बाबा चलो चलो आप देखो देखो तो सही, तो बाल हट्टे के लिए चलो चलते हैं, कोई बात नहीं बाल हट्टे हमको पता है। और हंसते हंसते नंद महाराज यशोदा माई जाते हैं और हंसते 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 देखते तो क्या है, पूरा खेत मोतियों से भरा है पूरा खेत। तब हंसना बंद कर देते, तुरंत बिनना शुरू कर देते। तब तक तो हंस रहे थे बाल हट्टे के रूप में, अभी देख रहे हैं कि वो हकीकत है। 100 माला की मूर्तियों की माला ले गए थे और देखो एक पूरा खेत भर दिया है, धड़ाधड़ उसको बीनते हैं और एक बैलगाड़ी भरकर भेज देते हैं, हमारा रिटर्न गिफ्ट। तो राधा रानी ने फिर उस मोतियों को डभारा गांव में बोकर उससे रत्न उगाले हैं। शी प्लांटेड द मोतीज फ्रॉम नंदगांव एंड शी क्रिएटेड डायमंड्स ओवर देयर। तो राधा की लीला जो है कृष्ण की लीला से भी श्रेष्ठ है, उन्होंने मोतियों के मोती बनाए, इन्होंने मोतियों के रत्न बनाए, इसलिए डभारा गाँव में रत्न कुंड है। तो ये वो जगह है जहाँ पर राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे। जैसे ही लीला समाप्त तो हुई, कुछ दिन बाद कृष्ण यहाँ पर वापस बावड़े होकर ढूंढ ढूंढे आ गए और यहाँ पर देखा, अरे ये तो कुंड पीला हो गया, मैं तो कई बार आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो ऐसे हाथ ऊपर उठा के पूछने लगे, ये पीली वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस। ऐसे करते 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 वो पुकारते 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 ऐसे सीढ़ियों से उतरते हैं, अंदर जाते हैं, फिर एड़ियों तक, फिर घुटने तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक, फिर मुँह तक, फिर ऊपर तक। आखिर में क्या होता है, आवाज़ गूंज रही है, ये पीली वस्तु किस प्रकार की है, कौन सी वस्तु है ये, इसका रहस्य क्या है? तो क्या दिख रहा है, इसके जल के अंदर दो हाथ दिख रहे हैं और एक मोर पंख दिख रहा है और वो ऐसे पूरा कुंड में घूम रहा है सब जगह पर। उसकी आवाज़ सुनकर सब ब्रजवासी इकट्ठा होते हैं बंधन बरसाने के, देखते हैं कोई पुकार रहा है कि पीली वस्तु क्या है, आप बोलो ये पीली वस्तु क्या है, अरे पुकारो पुकारो ये पीली वस्तु क्या है। फिर कुछ देर बाद में वो हाथ ऐसे ऊपर आ जाते हैं, एक शीश ऊपर आता है, कंधे ऊपर आते हैं, वक्षस्थल ऊपर आता है, कमर आती है, फिर एक पूरा व्यक्ति बाहर निकलता है, पूरा गोल्डन रंग का बन गया है, कंप्लीट इज बिकम गोल्डन। फिर भी पुकार रहा है कि पीली वस्तु क्या है, फिर भी पुकार रहा है पीली वस्तु क्या है। तो हमारे जो परम पूज्य बरसाना महाराज है वो बताते हैं कि सबसे पहली बार कृष्ण भगवान ने इस ब्रह्मांड में ये प्रकट किया कि मैं अगले अवतार में गौरांग महाप्रभु बन के आने वाला हूँ, यहाँ पर ये जगह है वो। तो वो पीली वस्तु क्या है उसका उत्तर आपने लिया नहीं, प्रश्न तो बहुत पूछा आपने, व्हाट इज द आंसर? वो पीली वस्तु राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, द लव दैट राधा रानी हैज फॉर कृष्ण इज स्टोर्ड इन दिस पीली पोखर प्रिया कुंड। तो इसमें बहुत सारी लीलाएं हैं, थोड़ा संक्षेप बता देते आपको क्विकली। यहाँ पर एक तो वो आ गए, कृष्ण आ गया और डूब गए, फिर वो गोल्डन बन गए। फिर यहाँ पर नंदगांव की होली जब शुरू होती है वसंत पंचमी को, तो वसंत पंचमी के पहले दिन नंदगांव से एक पांडे को भेजते हैं यहाँ पर, ही इज़ लाइक रिप्रेजेंटेटिव, वो दूत है नंदगांव का कृष्ण भगवान का, और वहाँ से वो आमंत्रण लेकर आता है होली खेलने का। तो यहाँ पर आकर वो गोपियों को मिलता है और गोपियों को बोलता है कि आपको निमंत्रण है हमारे ठाकुर जी का होली खेलने के लिए। बोला अच्छा वहाँ से आए हो, उनकी तरफ से आए हो, चलो उसको धो देता है, सब लोग रंग लाते हैं, उसको पूरा भिगा देते हैं, रंग लाल के पूरा लगा कर पूरा कर, सब गोपियाँ उन पर हावी हो जाती हैं और बेचारा परेशान हो जाता है। तो राधा रानी बड़ी दया आती है उसको, अरे वो तो उनका दूत है, वो तो खुद तो नहीं है ना, छोड़ो बेचारे को कितना परेशान करते हो। तो पाणे जाता है वापस, बोलता है ऐसे ऐसे हुआ। फिर दूसरे दिन ठाकुर जी आते हैं और उसका इतना सुंदर वर्णन दिया है कि दूसरे दिन ठाकुर जी वहाँ से निकलते हैं जुलूस में होली खेलने के लिए, रंग वंग लेके पूरा साहित्य लेके, और उसके जुलूस में कौन कौन है, सब भेष बदल कर आए हुए हैं, पंचमुखी शिव भगवान है,
चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, निर्वस्त्र सुखदेव जी हैं, व्यासदेव जी हैं, नारद मुनि वीणा लेकर गोपी बनकर गा रहे हैं, ऐसे देवी देवताएं सब ब्राह्मणी ब्राह्मण बनकर, कोई फूल बेचने वाली बनकर, कोई और कुछ करने वाली बनकर, कोई ब्राह्मणी बनकर भेष बदलकर सब जुलूस में आ रहे हैं। और आगे कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर आते हैं। और मैंने आपको पहले बताया ना, आते आते पुकारो पुकारो यहाँ से, तो यहीं से आने के बाद में कृष्ण भगवान ने राधा रानी को पुकारा है, इस तरफ महल है, पुकारा है आओ होली खेलने के लिए आओ। तो सखियाँ ऊपर हैं, आवाज़ सुनती है कृष्ण भगवान की, बोले सर राधा रानी जल्दी जल्दी आओ, देखो कृष्ण आए हैं श्याम सुंदर जी होली खेलने के लिए। तो वो झरोके में आती है, और झरोके में जब आती है तो यहाँ से वो पिचकारी मारते हैं उनको, लेकिन पिचकारी कहते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं आप नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। तो फिर सब सखियाँ उनको तैयार करके यहाँ पर लेके आती है, और यहाँ पर सबसे पहले होली होती है। और होली जब आरंभ होती है तो पहले वो सूखी होली खेलते हैं, मतलब गुलाल के साथ में, उसके भी नियम होते हैं बहुत सारे, फिर रंग की होली खेलते हैं। तो पहले वो गुलाल की होली खेलना तय करते हैं, तो गुलाल की होली में राधा रानी और सखियाँ कृष्ण भगवान को हरा देती हैं। तो कृष्ण भगवान बड़े चालाक हैं, वो जब हारने लगते हैं तुरंत पिचकारी निकालते हैं और उस पर मारना शुरू कर देते हैं, तो ये समझते हैं कि ये छल कर रहे हैं, तो तुरंत राधा रानी उसको हाथ से रोक लेती है। तो हाथ को जब रोकती है तो पिचकारी हाथ को लग के जो रंग उड़ते हैं वो राधा रानी के गाल पर जाकर टिक जाते हैं। तो ये दृश्य देखकर कि लाल रंग के जो दाने छोटे छोटे बिंदु है तो राधा रानी के गालों पर टिके हुए हैं, वो सौंदर्य देखकर ये हाथ से उनकी पिचकारी गिर जाती है और इसे बावड़े होकर उनको देखने लगते हैं, अरे इतना सुंदर सौंदर्य है इनका। वो बहुत बावड़े हो जाते हैं, तो तुरंत सखियाँ उनको पकड़ लेती है कि आपने नियम तोड़ा है, आपको दंड देना होगा। तब वो होश में आते हैं, तब तक ताकते रहते हैं, क्या ताक रहे हो, हाँ खेल में तुम लोग ऐसे गुस्ताखी करते हो, इसको दंड देना चाहिए। और होली में जब दंड देते हैं उसका मतलब क्या होता है, आँखों में काजल भर देते हैं, ऐसे प्रेम से लकीर लगाते नहीं, ऐसे भर भर के लगाते हैं, मतलब दंड दिया हुआ आदमी है, होली से हारा हुआ और दंड दिया हुआ आदमी, तो सब लोग तय करते हैं इसको दंड देना चाहिए। तो सब सखियाँ आके उनका हाथ ऐसे पाँव में पीछे पे कस के पकड़ते हैं, जब बंदी बनाते हैं ना पुलिस लोग, बंदी बनाते हैं और राधा को बुलाते हैं, आओ राजा आ जाओ उसको काजल लगाओ। तो वैसे बंधे हुए हैं, तो जब काजल लगाने जाती है तो वो ऐसे करता है वैसे करता है, फिर और सखियाँ आकर उसकी मुंडी पकड़ लेती है, लगाओ अभी इसको। तो राधा रानी दोनों हाथ से भर भर के काजल लगाते हैं, सब लोग तालियां पीट कर हंसते हैं, हरी बोल। तो ये लीला भी इस जगह पर हुई है, ऐसे अनंत लीलाओं का भंडार है ये जगह जो है। अब ये सब लोग आप इसको प्रणाम करो और राधा रानी से प्रार्थना करो कि आपकी मधुर मधुर लीलाओं को हम लोग बड़े गौरव भाव से सुने, हाँ एक मनोरंजन के रूप में नहीं सुने, लेकिन गौरव भाव से विथ ऑ एंड रेवरेंस हम सुनेंगे इसको नम्रता से। और हम अभी आचमन करेंगे, कृपा करके हमको भी इस पीली वस्तु का एक कण प्राप्त हो जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। बोलो पिगली पोखर धाम की, प्रिया कुंड धाम की, जय जय श्री राधे।